सौरभ बजाज को आर्यांश से बचाने के लिए दीवा ने उसकी हेल्थ को क्रिटिकल बताते हुए उसे क्रिटिकल आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया था। आर्यांश सौरभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। इस वक्त दीवा और आर्यांश के बीच जंग छिड़ी हुई थी। दीवा हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन का हवाला देते हुए आर्यांश को अंदर जाने से मना कर रही थी। आर्यांश ने उसकी नहीं सुनी तो दीवा ने सिक्योरिटी बुलाने की धमकी दी। आर्यांश ने उसकी धमकी को अपने ईगो पर लेते हुए सख्त आवाज में कहा, ओ रियली, तो तुम अब सिक्योरिटी को बुलाओगी? ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। सिक्योरिटी छोड़ो, ऐसा करो कि तुम अपने हॉस्पिटल के डीन को यहाँ बुला लो, फिर देखते हैं यहाँ से कौन जाता है। आर्यांश के एटीट्यूड से दीवा समझ गई थी कि उसे इस तरह डरा धमकाकर हैंडल नहीं किया जा सकता। दीवा ने अपना लहजा नरम करते हुए प्यार से कहा, देखिए सर, उनकी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको मिलने से मना नहीं कर रही हूँ। कुछ दिनों में जब वो ठीक हो जाएंगे तब आप उनसे मिल सकते हैं। प्लीज़ रूल्स फॉलो कीजिए। आर्यांश को रोकने के लिए दीवा को जो भी समझ आ रहा था वो कर रही थी। उसके हिसाब से आर्यांश वहाँ अच्छे इरादों से नहीं आया था। अगर उसने उनकी बातें नहीं सुनी होती तो उसे क्या फ़र्क पड़ता था कि सौरन बजाज से कौन मिलने आता है या कौन नहीं। उसकी बात सुनकर आर्यांश ने कंधे उचकाए और फिर वहाँ लगी चेयर पर बैठते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर उनके ठीक होने का इंतज़ार करूँगा। दीवा को अब कुछ कुछ उसके इरादे समझ आ रहे थे। वो कपूर इंटरनेशनल्स का सीईओ था, उसके पास इतना फ्री टाइम कैसे हो सकता था? ज़रूर वो उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर आया था। ये समझते ही दीवा ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आँखें बंद कर लीं। वहाँ ड्यूटी की जिम्मेदारी नव्या की थी। दीवा जानती थी कि उसके जाते ही नव्या को मना कर आर्यांश ज़रूर अंदर चला जाएगा। दीवा ने नव्या की तरफ देख कर कहा, नव्या, तुम जाकर अपना काम करो, मैं इन्हें देखती हूँ। ठीक है डॉक्टर गोयंका, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, नव्या ने जवाब दिया और फिर अफसोस भरे भाव से आर्यांश की तरफ देखा। वो उसका क्रश था, उसकी आंखों के सामने था, फिर भी उसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। नव्या वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही आर्यांश ने दीवा की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर डॉक्टर नहीं हो। आर्यांश के बोलने का लहजा दीवा को डरा रहा था। एक दिन में वो उसे दूसरी बार मिल रही थी और दूसरी बार वो उसका झूठ पकड़ रहा था। आर्यांश को सीधा जवाब देने के बजाय दीवा ने बातचीत का रुख बदलते हुए हड़बड़ाकर कहा, अगर तुम पेशेंट से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से पेशेंट को कुछ भी हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम रहोगे। ओ रियली, और इसका रिस्पॉन्सिबल मैं कैसे रहूँगा? तुम कुछ भी बकवास बोल रही हो। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल होगा, आर्यांश बोला। हॉस्पिटल इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा क्योंकि हम अपनी सेफ्टी और सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तुम जिद करके अंदर जाना चाहते हो, तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही होगे मिस्टर आर्यांश कपूर, दीवा ने उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए कहा। जो दीवा थोड़ी देर पहले आर्यांश से डर रही थी वो अब उसे धमकी देने लगी। उसकी हिम्मत सच में बढ़ती जा रही थी। अब तो वो सीधा आर्यांश से सवाल जवाब करने लगी थी। हॉस्पिटल इसलिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि मैं खुद को डिसइन्फेक्ट करके अंदर जाऊंगा। फिर भी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ तो या तो तुम्हारे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है या फिर यहाँ की सफाई में। अब समझ में आया डॉक्टर? आर्यांश ने पूरी चालाकी से जवाब दिया। दीवा की इतनी कोशिश करने के बाद भी वो आर्यांश को मुकाबला नहीं दे पा रही थी। उसने हार मानते हुए कहा, चेंजिंग रूम उधर है। आर्यांश के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी और वो चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। दीवा उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। इस वक्त उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वो पिछले 3 महीने से इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उसकी काबिलियत को देखकर डॉक्टर यथार्थ मल्होत्रा और बाकी जलने वाले लोगों ने उसे हटाने की कोशिश भी की, पर वो शांति से अपना काम कर रही थी। पर जब से आर्यांश आया था ऐसा लग रहा था कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खुद को डिसइन्फेक्ट करने के बाद आर्यांश बाहर आया और उसने दीवा को अपने साथ चलने का इशारा किया। क्रिटिकल आईसीयू में पहुंचने के बाद आर्यांश ने एक नज़र दीवा की तरफ देखा, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। आर्यांश उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है डॉक्टर गोयंका, एक एयर कंडीशनर रूम में तुम्हें पसीना आ रहा है? डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है, दीवा ने जल्दी से अपने माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को साफ करते हुए कहा। आर्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा और उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। दीवा को उसके साथ उस कमरे में बहुत अजीब लग रहा था। वहां घड़ी की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। अंदर आने के बाद आर्यांश एकटक सौरभ बजाज की तरफ देख रहा था। अचानक उसने इस खामोशी को तोड़ते हुए सर्द आवाज में कहा, ये मरने वाला है। आर्यांश जिस तरह उसे घूर कर देख रहा था, उसका बस चलता तो वो अपनी नजरों से ही उसे इस वक्त मार देता। वहीं आर्यांश की बात सुनकर दीवा चौंक गई थी। उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से पूछा, तुम यहाँ क्या करने की सोच रहे हो? देखो कोई बेवकूफी मत करना, यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं इसे मार दूंगा? आर्यांश ने सार्कैस्टिकली मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर दीवा के शरीर में एक सिहरन सी महसूस हुई। न जाने क्यों उसे आर्यांश के सामने इतना डर लग रहा था, उसका ऑरा ही ऐसा था। दीवा ने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे,
ये तुम्हारे सगे मामा हैं और मामा माँ के समान होते हैं। हाँ, मेरे सगे प्यारे चाचा, आर्यांश ने जवाब में इतना ही कहा। दीवा उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी। कौन जानता था कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ था जो आर्यांश उनसे इतनी नफरत करता था। कोई भतीजा अपने ही मामा को जान से क्यों मारना चाहेगा, ये बात दीवा को थोड़ी हैरान कर रही थी। वो वहां खड़ी होकर सोच रही थी, तभी आर्यांश ने अचानक पूछा, इसे कब तक होश आएगा? 2 या 3 दिन का टाइम लग सकता है, उनकी पूरी देखभाल करने की जरूरत है, दीवा ने जवाब दिया। तब तो मेरे प्यारे मामा ने डॉक्टर गोयंका का काम बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इनका अच्छे से ध्यान रखना, कहीं ये मर ना जाए, आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर कहा और फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। दीवा उसके पीछे पीछे आ रही थी। बाहर आते ही दीवा ने सौरभ बजाज की सिक्योरिटी के लिए 2 नर्स को छोड़ दिया था। आर्यांश वहां से जा चुका था तो दीवा भी बेफिक्र होकर अपने काम में लग चुकी थी। पूरे दिन काम करते हुए दीवा आर्यांश के बारे में सोचती रही। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि कोई उसके आसपास होता था तो उसके बातचीत करने के लहजे से उसे खुद ही घबराहट होने लगती थी। वो काफी रहस्यमय तरीके से बात करता था। मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, ऐसे लोगों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। अच्छा हुआ जो मैंने उसे अजनबी बनने को कह दिया और वो मेरी बात को फॉलो भी कर रहा है। सौरभ बजाज के डिस्चार्ज होने तक मुझे उसका ध्यान रखना है, उसके बाद वो उसके साथ कुछ भी करे हॉस्पिटल या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, दीवा ने मन ही मन कहा। शाम को काम खत्म करने के बाद दीवा अपने पापा से मिलने के लिए जेल गई हुई थी। जब वो वहां पर पहुंची तो ठीक उसी वक्त आर्यांश की गाड़ी वहां आकर रुकी। जब आर्यांश ने दीवा को पीछे से वहां देखा तो उसकी निगाहें सर्द होने लगी थी। वहीं आर्यांश की मौजूदगी से अनजान दीवा अपने कदम अंदर बढ़ा रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, एक और चैप्टर लाइन में है तो दोनों पार्ट्स को पढ़कर कमेंट कीजिएगा। आर्यांश दीवा के पीछे वहां पर आया है या अपने ही किसी काम से? वैसे आर्यांश और दीवा का एक साथ होना इत्तेफाक किसी तरह नहीं है। पढ़कर प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।